ये आकाशवाणी है। अब आप नईम अख्तर से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड के रांची में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वहां समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, लेकिन जनजातियां इसके दायरे में नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र से बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए नियम बनाए जाएंगे, क्योंकि इससे राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव हुआ है। श्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों ने जनजातीय महिलाओं से विवाह करने के बाद जनजातियों की जमीन छीन ली है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कानून बनने के बाद जनजातियों की भूमि उन्हें लौटा दी जाएगी। श्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में प्रत्येक महिला को गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महीने में 2,100 रुपए दिए जाएंगे। सभी परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा और दीपावली तथा रक्षाबंधन के अवसर पर 2 सिलेंडर निःशुल्क दिए जाएंगे। प्रत्येक बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को 2 वर्ष तक प्रति माह 2,000 रुपए दिए जाएंगे। श्री अमित शाह ने बताया कि 5 वर्ष में 5 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकारी नौकरियों के खाली पड़े 2,87,000 पद समयबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री ब्रिस्बेन जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में भारत के 4th वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। वो कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेन्नी वोंग के साथ विदेश मंत्री स्तरीय संवाद की 15वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन में 2nd रायसीना डाउन अंडर के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के 2nd चरण में डॉक्टर जयशंकर 8 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। इस दौरान वो आसियान भारत थिंक टैंक की 8वीं गोलमेज वार्ता को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के आत्मनिर्भर अभियान के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और वर्ष 2029-30 तक देश का रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्षमता को विकसित करने का आह्वान किया। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कोलंबिया में पार्टियों के सम्मेलन की 16वीं बैठक में भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और योजना NBSAP का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने इसे अद्यतन करने में भारत के संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। इस योजना के अंतर्गत पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने की कार्यनीति की रूपरेखा तैयार की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्य योजना 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की दीर्घकालिक दृष्टि के साथ 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देशक है। ये दस्तावेज पिछले महीने की 30 तारीख को जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज माओवादियों के हमले में 2 पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए। ये जगरगुंडा शहर के साप्ताहिक बाजार में ड्यूटी पर थे। इसी दौरान माओवादियों ने इन पर हमला किया। इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। भाई दूज का त्यौहार आज उमंग और उत्साह से मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये शुभ त्यौहार भाइयों और बहनों के बीच स्नेह को गहरा करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कामना की कि प्रेम, समर्पण और भक्ति का ये पर्व सभी के जीवन में अपार खुशियां लाए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने 3rd और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 25 रन से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 174 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य दिया है। भारत की टीम दूसरी पारी में 121 रन पर सिमट गई। आज न्यूजीलैंड ने अपने कल के स्कोर 9 विकेट पर 171 रन से आगे खेलना शुरू किया और सिर्फ 3 रन ही जोड़ सकी। रेलवे त्योहारों के दौरान 7,500 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। आज दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगभग 20 विशेष रेलगाड़ियां देश के विभिन्न भागों के लिए चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।